तब वसुंधरा ने बंद कमरे में अभिमान जी को कुछ ऐसा कहा जिससे अभिमान जी के चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया और अचानक उनकी आंखों में तनाव भरा आया था। उनकी चेहरे पर से पसीना निकलना शुरू हो गया और अगले ही पल उन्होंने गुस्से में खींच कर एक तमाचा वसुंधरा के मुंह पर दे मारा और उस पर चिल्लाकर बोले, जस्ट शट अप, ये तुम्हारी कोई नई घटिया चाल है। तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह की कोई भी चाल चलोगी तो मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगा? इम्पॉसिबल, ऐसा कभी भी नहीं होगा, समझी तुम? ये सुनते ही वसुंधरा की आंखों में एक जबरदस्त चमक उभर आई और वो एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली, यही है सच्चाई अभिमान सूर्यवंशी। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा, तुम खुद से पता लगवा सकते हो। अब यही सोचकर अभिमान जी, जो इस वक्त दादाजी के पास बैठे हुए थे, उनका चेहरा काफी हद तक कहीं खोया खोया हुआ सा लग रहा था। तब दादाजी ने अभिमान का हाथ एकदम से थाम लिया और अगले ही पल फिक्र करते हुए बोले, क्या बात है अभी, कुछ परेशान लग रहे हो, सब ठीक है ना? दादाजी प्यार से अपने बेटे को अक्सर अभिमान की जगह अभी कहकर पुकारा करते थे। दादाजी की बात सुनकर अभिमान जी ने जल्दी से अपनी गर्दन ना हिलाई और उन्हें अनदेखा करके अंश के साथ खेलने लगे। लेकिन दादाजी ने अपने बेटे की आंखों में उदासी को भांप लिया था और वो समझ चुके थे कि कुछ न कुछ तो ऐसा है जो अभिमान उनसे छुपा रहा है। फिलहाल अंश आस्था को हॉल में देखने के बाद अरमान सीधा जाकर वॉशरूम में खड़ा हो गया था और उसके शरीर पर इस तरह से पानी बह रहा था मानो टेढ़ी मेढ़ी गलियों से कोई नदी बह रही हो। उस वक्त अरमान बेहद अट्रैक्टिव और हॉट शॉट दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। एक अजीब सा तनाव उसके दिल में महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि अरमान खुद से ही भीतर कोई जंग लड़ रहा हो, लेकिन कुछ तो ऐसा था जिसके बारे में अरमान लगातार सोचे जा रहा था। काफी देर तक ठंडे पानी से नहाने के बाद अरमान बाहर आया और तैयार होकर उसने एक आह भरी और जल्द ही कुछ मैसेजेस फ्रेंड्स ग्रुप भेज दिए, यानी कि आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान और साथ ही साथ अविनाश को भी मैसेज कर दिया था, क्योंकि इस वक्त अरमान उन सबसे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना चाहता था। फिलहाल सभी अपने अपने कमरों में अपनी अपनी बीवियों से चिपके हुए सोए पड़े थे। वहीं आकाश तो रश्मि को एक पल के लिए भी छोड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि जिस तरह से रश्मि कल रात गायब हो गई थी उसकी इनसिक्योरिटी कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी थी। वहीं रश्मि, जिसे सुबह जल्दी उठने की आदत थी, अब तंग आकर सोचने लगी, भला मैं इतनी सुबह सुबह कहाँ जा सकती हूँ यार, जो ये मुझे इतना टाइट पकड़कर सोए हुए हैं। क्या उन्हें इतनी समझ नहीं है कि ये मुझे थोड़ा ढीला पकड़कर सोएं? अगर ये इसी तरह से मुझसे चिपक कर सोएंगे तो इससे मेरे बच्चे को भी परेशानी होगी। ओफो, अब मैं क्या करूँ भगवान। अब रश्मि मुंह बनाते हुए कुछ सोचने लगी कि उसे इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, क्योंकि आकाश तो उसे जरा भी हिलने का मौका नहीं दे रहा था। फिलहाल जैसे तैसे रश्मि ने अपना एक हाथ छुड़ाकर बाहर निकाला और अपने बालों की एक लट निकालकर तुरंत ही आकाश के कानों में उससे गुदगुदी करना शुरू किया। अब आकाश ने तुरंत ही नींद में रश्मि के बालों को झटक दिया और फिर से उसे और कसकर गले से लगाकर कम्फर्टेबली सो गया। अब रश्मि और ज्यादा परेशानी में हो गई थी, इसीलिए देर ना करते हुए रश्मि ने एक बार फिर अपने बालों की कुछ लटें तुरंत ही आकाश के कानों में घुसाने की कोशिश की, लेकिन इस बार आकाश तुरंत ही अपने कान पकड़कर एकदम से हड़बड़ाकर तुरंत ही उठकर बैठ गया। वो अभी भी नींद में लग रहा था। अब आकाश ने अपने आसपास यहाँ वहाँ तेजी से देखा कि ऐसा क्या था जो उसे नींद में इतना डिस्टर्ब कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सोई हुई रश्मि पर पड़ी तो एकदम से उसकी आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि भले ही रश्मि आंखें बंद करके सोने का नाटक कर रही थी लेकिन अभी भी उसकी उंगलियां उसके बालों में उलझी हुई थीं। अब आकाश को सारा माजरा समझ में आ गया था। उसने थोड़ा सा आगे बढ़कर तुरंत ही रश्मि के होठों को कैप्चर कर लिया था और रश्मि उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश करने लगी थी। तब आकाश नटखट अंदाज में उससे कहा, अगर फिर से तुमने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो इस बार मैं इससे भी बड़ा वाला किस कर दूंगा, समझी तुम? इस बात पर रश्मि भी मुंह बनाकर उठकर बैठ गई और अगले ही पल हल्की नाराजगी से बोली, आपने मुझे कितना ज्यादा कस के खुद से चिपकाया हुआ था। मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस हालत में मुझे थोड़ा फ्रेश एनवायरनमेंट चाहिए और आप हैं कि बिल्कुल मुझसे चिपक कर सोते हैं। रश्मि के इस बात पर आकाश मुस्कुरा दिया और उसके माथे को चूम कर बोला, अच्छा अच्छा ठीक है मेरी जान, सॉरी, अब दोबारा ऐसे नहीं करूंगा, ठीक है? लेकिन जैसे ही आकाश को अपने फोन पर नोटिफिकेशन मिला वैसे ही वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और एकदम से हड़बड़ा कर बोला, अच्छा मैं कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ, जल्दी ही आ जाऊंगा, तब तक तुम फ्रेश हो जाओ, ठीक है? और आज तुम हॉस्पिटल नहीं जाओगी, सीधा घर पर ही आराम करोगी, कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी। ये सुनकर रश्मि की नजरें साफ तौर पर ठिठक गईं और वो आकाश को सवालिया नजरों से घूरते हुए बोली, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं अभी भी ट्रैवल कर सकती हूँ और मैं बिल्कुल परफेक्टली फाइन हूँ और मैं अपना काम नहीं छोड़ सकती हूँ आकाश, और मैंने आपको बताया था ना कि जैसे ही मेरी मैटरनिटी लीव स्टार्ट होगी मैं खुद लीव ले लूंगी, ठीक है? लेकिन अभी मुझे हॉस्पिटल से लीव की जरूरत नहीं है। आकाश ने रश्मि के बात पर हामी भरते हुए एकदम से कहा,
जानता हूँ कि अभी तुम बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज मत जाओ, क्योंकि आज मेरा दिल कर रहा है तुम्हारे साथ पूरा दिन टाइम स्पेंड करने का, इसीलिए प्लीज कहीं मत जाओ। कहीं ना कहीं आकाश भले ही रश्मि को बाहर जाने से रोक रहा था, लेकिन उसके मन में एक अनजाना सा डर था और इस डर के चलते वो रश्मि को बाहर जाने से रोक रहा था। फिलहाल रश्मि ने सोचा कि शायद आकाश बस उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, इसीलिए अब ज्यादा ना सोचते हुए रश्मि ने हामी भरी और उसे प्यारी सी मुस्कान देते हुए बोली, ठीक है अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं हॉस्पिटल में आज की छुट्टी के लिए मैसेज डाल देती हूँ। इतना बोलकर रश्मि जल्दी ही अपना फोन यहाँ वहाँ खोजने लगी थी। दूसरा सीन, एक और सुबह की शुरुआत। वहीं दूसरी ओर एक प्यारा सा और स्पेशल मूवमेंट आपस में शेयर करने के बाद रौनक और आहान एक दूसरे से लिपटकर सोए हुए थे, लेकिन यहाँ मामला उल्टा था। यहाँ आहान रौनक से नहीं चिपका हुआ था, बल्कि रौनक में आहान को पूरी तरह से जकड़ रखा था। वो पूरी तरह से उस पर हावी होकर बेफिक्री से सो रही थी। आहान पूरी तरह से उसके नीचे दबा हुआ था और सांस लेने में स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन आहान को अपना गद्दा बनाकर सोने में रौनक को मजा आता था। अब आहान ने मन ही मन सोचा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, अगर ये इसी तरह से मेरे ऊपर लेटी रही तो मैं सांस ही नहीं ले पाऊंगा, और अगर मेरी सांसें चली गईं और मैं इस दुनिया से चला गया तो मेरे बच्चे को कौन संभालेगा? क्या मेरा बच्चा बिना बाप के नाम के पलेगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जब से आहान को ये पता चला था कि वो बाप बनने वाला है, तब से कहीं ना कहीं वो अपने अजन्मे बच्चे के लिए अभी से ही इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव हो चुका था कि हर सिचुएशन में वो पहले अपने बच्चों के बारे में सोचने लग जाता था।
फिलहाल जैसे तैसे उसने दोनों हाथों का जोर लगाकर रौनक के पेट पर ज्यादा दबाव ना डालते हुए उसे थोड़ा सा साइड में कर दिया और खुद उसके नीचे से आहिस्ता से सरक कर बाहर निकला। तब उसे ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे अब तक वो बड़े से पहाड़ के नीचे दबा हुआ था और अब वहां से अपनी जान बचाकर निकल कर आ रहा है, और कुछ देर तक वो वहीं खड़े होकर जोर जोर से गहरी गहरी सांस लेने लगता है। लेकिन जैसे ही उसे अपने फोन पर नोटिफिकेशन मिला, उसका चेहरा एकदम से ही डार्क हो गया और जल्द ही एक नज़र रौनक की ओर देखकर वो भी मीटिंग की तैयारी करने के लिए तैयार होने लगा। वहीं अरमान जल्द ही फ्रेश होकर नीचे आ गया था और सबके सब एक साथ एक अच्छी और खुशहाल फैमिली की तरह ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। सब कुछ बड़ा ही नॉर्मल सा लग रहा था, लेकिन सभी बॉयज़ के दिलों में एक अजीब सी कसक और बेचैनी थी, जैसे कि वो सब लोग कुछ अंदाज़ा लगा रहे हों लेकिन उसे एक दूसरे से बयां नहीं कर पा रहे थे। तभी अरमान ने सीरियसनेस से सबकी ओर एक नज़र देखा। ध्रुव, आहान और बाकी सभी भी एक एक करके अरमान को चुपके से देख रहे थे, क्योंकि अरमान ने सभी को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि वो सबसे अकेले में कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता है, वो भी ब्रेकफास्ट के बाद, क्योंकि अगर वो सब बिना ब्रेकफास्ट किए वहां से बाहर निकले तो घर की सारी लेडीज जरूर परेशान हो जाएंगी, दादाजी और नानी माँ भी चिंतित हो उठेंगे। इसलिए अरमान चाहता था कि सब अच्छे से नाश्ता वगैरह करें और फिर रोज की तरह अपने अपने काम पर निकल जाएं। और वैसे भी अब अंश की किडनैपिंग को काफी वक्त हो चुका था। अब अरमान ने आस्था की ओर सीरियस एक्सप्रेशन से देखा और उसे बताया, आस्था मुझे आज लौटने में थोड़ा लेट हो जाएगा और अगर कोई भी बात हो तो आप सीधा मुझे कॉल करिएगा, ठीक है? ये सुनते ही आस्था ने हल्का सा मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। फिर अरमान सबको एक नज़र और देखकर बोला, ओके मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है इसलिए मैं अब निकलता हूँ। अरमान के निकलते ही आकाश और सुमित भी एकदम से उठ खड़े हुए। हमें भी आज कुछ ज़रूरी काम है, हमारी होटल में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है इसलिए मैं भी निकल रहा हूँ, सुमित ने जल्दी से कहा और फटाफट बहाना बनाकर आकाश को लेकर बाहर निकल लिया। ध्रुव भी अब वंशिका की ओर शांत नजरों से देखकर बोला, देखो इतने दिनों से मैं ठीक से काम भी नहीं कर पा रहा हूँ, आज डॉक्टर के साथ कुछ इम्पोर्टेंट केसेस के बारे में डिस्कस करना है इसलिए मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं भी जा रहा हूँ, बाय स्वीट हार्ट। वहीं आहान अफसोस में था, अगले ही पल वो सोच रहा था अब वो क्या बहाना बनाए। जनाब ने ऑफिस जाना तो बंद कर दिया था क्योंकि वो तो बस 24 घंटे रौनक के साथ ही रहना चाहता था, जब तक उसका बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक, ताकि रौनक को कभी भी कोई भी जरूरत पड़े तो वो आसानी से उसकी मदद कर सकें। जैसे ही आहान कुछ सोचकर खड़ा हुआ, रौनक ने आईब्रो उचकाते हुए उसे घूरा और अगले ही पल एकदम से उसे रोका। ओ हेलो, तुम कहाँ चले? क्या तुम भूल गए हो? तुम कॉलेज नहीं जाते, तुमने कॉलेज छोड़ दिया है और अरमान भाई से तुमने पूरे मेरी प्रेगनेंसी टाइम तक छुट्टी मांग ली है, तो अब कहाँ जा रहे हो? आहान ने गुस्से में मुंह फुलाते हुए मन में सोचा, क्या मेरी हवा हवाई सबके सामने मुझे थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट नहीं दे सकती क्या? फिलहाल उसने गहरी सांस ली और खुद के इमोशंस को संभालते हुए रोबदार आवाज में बोला, हाँ हाँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ और कुछ दिनों से कॉलेज भी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन तुम भूल रही हो मैंने 2 सेमेस्टर पूरे किए हैं और उसी के सिलसिले में मुझे प्रोफेसर से कुछ बात करनी है, तो मैं बस उनसे मिलने जा रहा हूँ, समझी? मैं सवा हवाई। इतना कहकर आहान उसकी बात सुने बिना ही वहां से 9:00-11:00 हो गया। अब सभी लेडीज कंधे उचकाकर एक दूसरे को कन्फ्यूजन से देखने लगी, लेकिन फिलहाल सभी को यही लग रहा था कि काफी दिनों से कोई घर से बाहर नहीं गया था,
सबको अपना अपना बिजनेस भी संभालना है, शायद इसलिए सब चले गए होंगे। उसी वक्त उन्हें अभिमान जी की आवाज सुनाई दी। बच्चों, मेरा भी नाश्ता हो गया। अच्छा, मैं भी अब चलता हूँ, मुझे कुछ काम है और अब मैं थोड़ी देर आराम भी करूंगा। अभिमान जी ने बड़े प्यार से आस्था को देखा और जल्द ही अपने कमरे की ओर चले गए। दादाजी बड़े ध्यान से अभिमान जी के एक्सप्रेशन नोटिस कर रहे थे, क्योंकि कल से ही अभिमान जी का स्वभाव बदला बदला सा लग रहा था। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बात उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही हो। अब दादाजी कुछ सोचते हुए धीरे से शांत आवाज में बोले, अच्छा बच्चों, आप लोग अच्छे से नाश्ता वगैरह करना, हमारा नाश्ता हो गया, अब हम थोड़ी देर टहलने जा रहे हैं, ठीक है? फिर दादी जी मुस्कुराकर वहां से उठ खड़े हुए, लेकिन वो सीधा कहीं और नहीं बल्कि अभिमान जी के कमरे की ओर चल पड़े। फिलहाल नानी माँ ने सबको अपनी आंखों के सामने बैठाकर अच्छे से ब्रेकफास्ट करवाया। फिर आस्था की ओर देखकर बोली, आस्था बिटिया, तुम्हें एक काम करना है, सब लड़कियों को बोलो थोड़ी देर बाद मुझे हॉल में मिले, ठीक है? इतना कहकर नानी माँ सीरियस एक्सप्रेशन लिए हॉल में जाकर आराम बैठ गईं। अब सभी लड़कियां एक दूसरे की ओर नासमझी देखने लगीं। सबके जाने के बाद रौनक ने बोर होते हुए आस्था, वंशिका और बाकी सभी की ओर देखते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है यार, अभी केवल कुछ ही मिनट हुए हैं लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इतना खाली खाली सा लग रहा है। अब रौनक के पास बैठी आस्था भी मायूसी से बोल पड़ी, हाँ हमें भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्या जरूरी है ऑफिस जाना, अरमान जी घर से काम नहीं कर सकते क्या? और वैसे भी वो तो कंपनी के मालिक हैं, कोई कर्मचारी थोड़ी ना है जो उनका ऑफिस जाना जरूरी है। अब आस्था की बात सुनकर रश्मि मुस्कुराने लगी और उसने उन्हें टोका, तुम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मैंने आज छुट्टी ली है और पता है तुम्हें मेरे पतिदेव ने क्या कहा था, कि वो आज का सारा दिन मेरे साथ बिताना चाहते हैं, लेकिन एंड मोमेंट पर उन्हें कोई जरूरी काम याद आ गया और वो मुझे यहाँ फंसा कर चले गए और अब मैं क्या करूँ, वापस अस्पताल भी नहीं जा सकती क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहाँ छुट्टी के लिए मेल डाल दी है। आपको क्या लगता है क्या चल रहा था अरमान के दिमाग में और आगे क्या होगा इस कहानी में?